नमस्कार। आज हम एक बहुत खास पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं, महाशक्ति की लोक यात्रा। ये डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने संपादित की है और ये वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जो गायत्री परिवार की सह संस्थापिका हैं, उनके जीवन पर आधारित है।
जी बिल्कुल, और जैसा पुस्तक खुद कहती है, ये सिर्फ घटनाओं का कोई ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये दृश्य सत्यों का भावपूर्ण संकलन है। मतलब जो सच दिखा, उसके पीछे के भाव, जिनसे अदृश्य की उस दिव्य शक्ति की एक झलक मिलती है।
हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि वंदनीय माता जी के जीवन के कुछ मुख्य पहलुओं को समझें, खासकर उनके मातृत्व के उस विशाल रूप को।
जी बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पुस्तक शुरू होती है उनके जन्म से, 20 सितंबर 1926। माहौल काफी आध्यात्मिक बताया गया है। उनके पिता पंडित जसवंतराव शर्मा और माता राम प्यारी जी दोनों ही मतलब गहरे भक्त थे।
हाँ, और कहते हैं कि जन्म से पहले उन्हें कुछ दिव्य संकेत भी मिले थे। पिताजी को तो जन्म के वक्त श्री देव्यथर्व शीर्षम के मंत्र सुनाई दिए।
अच्छा।
हाँ, तो उन्हें तभी एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं महाशक्ति का रूप है।
पुस्तक तो उन्हें सीता, रुक्मिणी जी, माँ शारदा, उस परंपरा में देखती हैं।
जी, महाशक्ति का पूर्ण अवतार। बचपन में जैसे आपने कहा, उन्हें लाली बुलाते थे, और उनमें एक अजीब सी शांति और कभी कभी भविष्य देखने की क्षमता, मतलब क्लेयरवॉयंस, वो दिखती थी।
कोई उदाहरण है इसका? जैसे?
हाँ, जैसे एक बार उन्होंने अपनी भाभी के पिताजी के आने की एकदम सही भविष्यवाणी कर दी। किसी को उम्मीद भी नहीं थी उनके आने।
कमाल है।
और उनका खेल भी वो शिव पूजा ही था। अक्सर ध्यान में उन्हें एक महायोगी शिव दिखते थे, जो बाद में पता चला कि वो उनके गुरुदेव, उनके आराध्य ही थे।
फिर किशोरावस्था ही और ध्यान वगैरह और गहरा हुआ होगा।
जी, और उसी गहन ध्यान में उन्हें अपने पिछले जन्मों का एहसास हुआ, जैसे वो कभी संत कबीर की साथी लोई थी या रामकृष्ण परमहंस की संगिनी माँ शारदा, और गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से उनका जो सनातन नाता था वो भी साफ हुआ।
तो फिर उनका विवाह 18 फरवरी 1945, वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी?
नहीं, पुस्तक तो उसे शिव और शक्ति का मिलन कहती है, तप और श्रद्धा का मिलन।
और ये मातृत्व वाली बात, वो शादी के बाद कैसे सामने आई?
वो तो तुरंत थी। आंवला खेड़ा पहुंचते ही गुरुदेव की पहली पत्नी की जो संतानें थी, दया और ओम प्रकाश, उन्होंने फौरन उन्हें अपना लिया, बिना किसी झिझक के।
अच्छा।
और ये वात्सल्य सिर्फ अपने बच्चों, मतलब सतीश जी और शैलू जी, उन तक ही नहीं रहा। मथुरा में जब अखंड ज्योति संस्थान में आई, तो वो सच में सबकी माताजी बन गई।
सबके लिए? मतलब कार्यकर्ताओं के लिए भी?
हाँ, कार्यकर्ता, आगंतुक, सबके लिए। यहाँ तक कि एक मुस्लिम कार्यकर्ता थे, अब्दुल लतीफ, उनके जूठे बर्तन तक धोकर उन्होंने उस वक्त की सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और दिखाया कि माँ का प्रेम कोई भेद नहीं जानता।
ये तो बहुत बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। ऐसे और भी उदाहरण होंगे पुस्तक में, हाँ कई हैं।
जैसे एक तपस्वी थे, ठाकुर हनुमंत सिंह। बड़े कठोर थे। उन्हें भोजन के जरिए अपने हाथ के बने खाने से ही बदल दिया, जैसे उनके भोजन में कोई दिव्य शक्ति हो। या फिर भक्तों की बिना कहीं समस्या जान लेना, जैसे वो विष्णु नारायण गोवरीकर जी का प्रसंग है। उन्होंने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई थी, पर माताजी ने उन्हें बुलाया, समस्या बताई और समाधान का भरोसा भी दिया।
इससे तो यही लगता है कि वो और गुरुदेव चेतना के स्तर पर बिल्कुल एक थे।
जी हाँ, बिल्कुल एक ही थे।
और उनका ये प्रभाव सिर्फ लोगों पर ही नहीं, मिशन के संचालन में भी दिखता होगा।
बिल्कुल, खास तौर पर जब गुरुदेव हिमालय जाते थे लंबे समय के लिए।
हाँ।
या फिर 1984 की वो कठिन सूक्ष्मीकरण साधना।
हाँ।
जब वो स्थूल शरीर से बाहर काम कर रहे थे।
हाँ।
तब पूरे मिशन को चलाना, संभालना, ये सब माताजी ने ही किया।
सिर्फ चलाया ही नहीं,
साथ में गुरुदेव के स्थूल शरीर की रक्षा भी की अपनी योग शक्ति से।
हाँ।
ये उनका नेतृत्व था, वात्सल्य भी और आध्यात्मिक सामर्थ्य भी।
फिर वो समय आया, 2 जून 1990, गुरुदेव का महाप्रयाण। पुस्तक बताती है कि ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत पीड़ा का समय था,
असहनीय पीड़ा, लेकिन उन्होंने इसे भी एक महातप की तरह लिया, एक आध्यात्मिक साधना बना लिया।
ये समझना मुश्किल है, एक तरफ इतना गहरा दुख, दूसरी तरफ लाखों बच्चों को संभालना।
हाँ, यही तो, एक माँ की तरह लाखों शोकाकुल बच्चों को वो ढाढ़स बंधा रही थी। और इस महातप के दौरान उनकी जो अपनी महाशक्ति थी, वो और भी ज्यादा प्रकट हुई।
जैसे?
जैसे अक्टूबर 1990 का श्रद्धांजलि समारोह, सोचिए देश में कैसी अशांति थी, गाड़ियां बंद थी।
हाँ, मुश्किल हालात थे।
फिर भी लाखों लोग आए शांति से, और व्यवस्था ऐसी कि सब हैरान थे। ये उनके संकल्प की शक्ति थी।
और वो अन्नपूर्णा वाला चमत्कार भी शायद तभी का है।
जी हाँ, लाखों लोगों ने खाया और भंडार भरे रहे, और वो विराट दीप यज्ञ की दिव्यता, लोगों ने साक्षात उनकी महिमा देखी।
तो ये पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा हमें वंदनीय माताजी के कई रूप दिखाती है। एक दिव्य अवतारी सत्ता, करुणामयी माँ, साधिका और एक समर्थ संचालक भी।
हाँ बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाती है ये पुस्तक। लेखक इशारा करते हैं कि वंदनीय माताजी आज भी सूक्ष्म रूप में है, मतलब भौतिक शरीर नहीं है, पर उनकी चेतना सक्रिय है, वो विद्यमान है। और ये बात सोचने वाली है कि कोई दिव्य चेतना स्थूल शरीर ना होने पर भी कैसे अपना प्रभाव बनाए रखती है, कैसे मार्गदर्शन करती रहती है।
सही कहा। ये प्रश्न हमें आगे सोचने और शायद अपने अनुभव से जानने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी कुछ झलकियां महाशक्ति की लोक यात्रा से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।